एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो साजिशों, महत्वाकांक्षाओं और हाँ, जीवित रहने की एक अद्भुत कला से भरी है।
बिल्कुल, रॉबर्ट ग्रेव्स का कालजयी उपन्यास आए क्लॉडियस।
हाँ, ये उपन्यास हमें रोमन साम्राज्य के शिखर काल में ले जाता है, पर एक बहुत ही अनोखे नजरिए से।
मतलब ये क्लॉडियस नाम के एक सम्राट की गुप्त आत्मकथा के तौर पर लिखा गया है, एक ऐसा सम्राट जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं करता था।
सही, तो आज हमारा मकसद है इस जटिल उपन्यास की कहानी, इसके यादगार किरदारों और इसके गहरे विषयों को खोलना, एक चर्चा के जरिए इसके सार को पकड़ना।
और ये जरूरी भी है क्योंकि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सत्ता के मनोविज्ञान, सच की ताकत और मुश्किल हालात में इंसान के हौसले की कहानी है ना?
हाँ, ग्रेव्स हमें सीधे जूलियो क्लॉडियन राजवंश के मतलब बिल्कुल अंदर ले जाते हैं, पर उनकी नजर वो इतिहास की किताबों वाली नहीं है।
नहीं, ये तो उस आदमी की नजर है जो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, एक अंदरूनी सूत्र। तो बात शुरू करते हैं लेखक से, रॉबर्ट ग्रेव्स, 1895 से 1985।
हाँ, वो सिर्फ अंग्रेजी उपन्यासकार नहीं थे, कवि भी थे, विद्वान भी थे।
लेकिन उनके जीवन और लेखन पर सबसे गहरा असर पड़ा वो था प्रथम विश्व युद्ध का अनुभव।
हाँ, वो ट्रेंच में बहुत बुरी तरह घायल हुए थे, उन्हें तो आधिकारिक तौर पर मृत भी घोषित कर दिया गया
तो
था।
सोचिए, और वो बच निकले। इस अनुभव ने जाहिर है उनमें सत्ता और आधिकारिक इतिहास के लिए गहरा शक पैदा कर दिया।
बिल्कुल, और यही शक उनके लेखन की जान है। ग्रेव्स की यही तो खासियत थी, वो इतिहास के संगमरमरी बुतों को तोड़कर उनके पीछे के असली इंसानों को दिखाते थे।
हाँ, जीते जागते जटिल और अक्सर बेरहम इंसानों को।
और ये जानना भी दिलचस्प है कि आई क्लॉडियस छपा कब, 1934 में।
हाँ, वो दौर यूरोप में तानाशाही ताकतें उभर रही थीं, मुसोलिनी, हिटलर।
बिल्कुल, माहौल में एक अजीब सा डर था, अनिश्चितता थी। तो जब लोगों ने उपन्यास में वो राजनीतिक भ्रष्टाचार, शक का माहौल, बेगाम सत्ता की क्रूरता के बारे में पढ़ा, तो उन्हें लगा जैसे वो अपना ही जमाना देख रहे हो।
हाँ बिल्कुल, इसीलिए इसे इतनी बड़ी सफलता मिली, आलोचनात्मक भी और व्यावसायिक भी।
इसने साबित कर दिया कि ऐतिहासिक उपन्यास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं होते।
सही कहा, वो वर्तमान को समझने का एक जरिया भी हो सकते हैं। इसने तो जैसे ऐतिहासिक कथा साहित्य को एक नई जान दे दी।
उपन्यास की शुरुआत भी बहुत नाटकीय है ना?
हाँ, कहानी हमें मिलवाती है बूढ़े हो चुके सम्राट क्लॉडियस से,
और वो तय करते हैं कि अब वक्त आ गया है अपने परिवार का, मतलब कुख्यात जूलियो क्लॉडियन राजवंश का।
हाँ, वही वंश जिसने रोमन गणराज्य को साम्राज्य में बदला था,
उसका सच्चा बिना लीपा पोती वाला इतिहास लिखने का।
और कहानी शुरू होती है सम्राट ऑगस्टस के सुनहरे दौर से और फिर जाती है तिबेरियस और कैलिगुला के अंधेरा भयावह शासनकालों तक।
और वो ये सब छिपकर लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सच बोलना
मौत को दावत देना है। उनकी उम्मीद बस ये है कि शायद हजार साल बाद ये लिखा हुआ मिले और दुनिया सच जान सके।
और यही उपन्यास का केंद्रीय विचार सामने आता है,
जीवित रहना, विपरीत परिस्थितियों में टिके रहना।
हाँ, क्लॉडियस वो बचपन से ही शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हैं, हकलाना, लंगड़ाना।
हाँ, और अक्सर बीमार भी रहते थे।
और उनके शाही रिश्तेदार जो ताकत और बाहरी दिखावे के भूखे थे,
वो उन्हें परिवार के लिए शर्मिंदगी का सबब समझते थे, एक मूर्ख।
उन्हें लगता था कि वो सार्वजनिक जीवन के लायक ही नहीं है।
लेकिन कहानी का सबसे बड़ा व्यंग, सबसे बड़ी आयरनी यही है
कि यही धारणा क्लॉडियस की ढाल बन जाती है।
आप सोचिए, जहां उनके ताकतवर, सुंदर, सक्षम रिश्तेदार सत्ता की दौड़ में मारे जाते हैं,
वहीं क्लॉडियस को हानि रहित समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
यही तो मूल संघर्ष है। क्लॉडियस अपने ही परिवार के जहरीले माहौल में कैसे जिंदा रहते हैं,
वो सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों का नैतिक पतन देखते हैं, उनकी हैवानियत देखते हैं,
और बस किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल उठता है, क्या मूर्ख होने का नाटक करके कोई बच सकता है? शायद सच का अकेला गवाह भी बन सकता है।
कहानी की शुरुआत में ही किरदारों का जाल बिछ जाता है। एक तरफ है बूढ़े होते सम्राट ऑगस्टस,
जो ऊपर से तो उदार लगते हैं पर अपने ही घर की साजिशों से बेखबर हैं, दुखद रूप से बेखबर।
फिर है उनकी पत्नी महारानी लिविया, पर्दे के पीछे की असली ताकत,
अद्भुत प्रतिभा, असीम धैर्य और उतनी ही बेरहमी।
उनका एक ही लक्ष्य है, अपने बेटे तिबेरियस के लिए सिंहासन पक्का करना।
फिर क्लॉडियस के पिता ड्रूसस हैं, भाई जमेनिकस, बहन लिविला।
हाँ, और इन सबके बीच जैसे कोने में बैठे क्लॉडियस, वो भुला दिए गए मूर्ख पर्यवेक्षक जो सब देखते हैं, सुनते हैं और याद रखते हैं। तो क्लॉडियस इस कहानी के नायक भी हैं और कथावाचक भी।
शारीरिक कमजोरियों और सामाजिक उपेक्षा के बावजूद दिमाग तेज है उनका, इतिहास के लिए जुनून है।
उनका मकसद बहुत सीधा है, जिंदा रहना बस।
और इसके लिए वो जानबूझकर अपनी कमजोरियों को और बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं।
हाँ, एक हानि रहित शराबी बेवकूफ का मुखौटा पहन लेते हैं।
उनका चरित्र विकास भी बड़ा दिलचस्प है, एक डरे हुए दर्शक से
इतिहास में एक सक्रिय हालांकि अनिच्छुक भागीदार बनने तक का सफर।
ये अपनी विकलांगता पर जीत की कहानी नहीं है।
नहीं, ये तो दुनिया आपके बारे में जो सोचती है उसे ही अपना हथियार बनाने की कहानी है।
क्लॉडिया समय सिखाते हैं कि शिकारी की दुनिया में कमजोरी का नकाब ही सबसे बड़ा कवच बन सकता
है ना?
बिल्कुल।
और दूसरी तरफ है लिविया, उपन्यास के पहले हिस्से की धुरी या कहें मुख्य खलनायिका, सिन के पीछे की असली शासक।
उनकी प्रतिभा और महत्वाकांक्षा डराने वाली हैं।
एक ही लक्ष्य, अपने बेटे टिबेरियस के जरिए अपने वंश को साम्राज्य का वारिस बनाना।
वो इंतजार करना जानती हैं, योजना बनाने में माहिर हैं, और जमीर वो तो है ही नहीं।
जहर उनका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है।
सार्वजनिक रूप से रोमन सदाचार की मूर्ति, लेकिन निजी तौर पर,
जैसा कि क्लॉडियस धीरे धीरे जानते हैं, वो ऑगस्टस के लगभग सभी सीधे वारिसों की मौत के लिए जिम्मेदार है, एक सीरियल किलर।
लेकिन क्लॉडियस के प्रति उनका तिरस्कार कि ये तो बस एक बेवकूफ है,
यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है।
और इसी वजह से क्लॉडियस उनके आतंक भरे साय से बच निकलते हैं। ये लिविया का किरदार, क्या ग्रेव्स उसे सिर्फ एक शैतान की तरह दिखाते हैं या उसमें सत्ता की मजबूरियों की झलक भी है?
ये अच्छा सवाल है। ग्रेव्स लिविया को निश्चित रूप से क्रूर दिखाते हैं, पर शायद पूरी तरह शैतान नहीं।
अच्छा,
वो उसे एक ऐसी महिला के रूप में चित्रित करते हैं जो मानती है कि रोम को बचाने के लिए और अपने परिवार के भविष्य के लिए ये सब जरूरी है। वो अपने कामों को तर्कसंगत बनाती है,
जो उसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है।
बिल्कुल। ऑगस्टस के शासनकाल में हम देखते हैं कि वो कैसे चुपचाप एक एक करके तिबेरियस के रास्ते के कांटों को हटाती है।
ऑगस्टस के चुने हुए वारिस मार्सेलस, अग्रिप्पा, गेयस, लूसियस
सब रहस्यमय तरीके से मर जाते हैं। लिविया जहर के इस्तेमाल और घटनाओं को मोड़ने में माहिर है।
और क्लॉडियस, वो कुछ हद तक संयोग से और कुछ अपनी तेज नजर से
इस भयानक सच को भांप जाते हैं, पर जानते हैं कि मुंह खोलने का मतलब है मौत।
एक निर्णायक मोड़ तब आता है जब ऑगस्टस के आखिरी पोते पोस्टोमस अग्रिप्पा,
हाँ, जो थोड़े गुस्सेल लेकिन ईमानदार थे,
उन पर झूठा इल्जाम लगाकर देश निकाला दे दिया जाता है।
ऑगस्टस अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में लिविया का खेल समझ जाते हैं
और गुप्त रूप से प्रोसिमोस्टोमस बुलाकर उसे अपना वारिस बनाने की योजना बनाते हैं।
लेकिन लिविया को इसकी भनक लग जाती है
और फिर आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण।
हाँ, जब लिविया उन अंजीरों में जहर मिला देती है जिन्हें ऑगस्टस अपने ही बाग से तोड़कर खाने वाले थे।
ऑगस्टस मर जाते हैं, टिबेरियस सम्राट बनते हैं
और महारानी माँ के तौर पर लिविया का पहला काम होता है पोस्टमस को मरवा देना।
उफ, ये दिखाता है कि सत्ता का नशा इंसान को किस हद तक गिरा सकता है।
जहाँ क्लॉडियस छिपकर जी रहे थे, वहीं उनके बड़े भाई जर्मेनिकस का रास्ता बिल्कुल अलग था, ज्यादा खतरनाक।
जर्मेनिकस, वो तो रोमन आदर्श थे, प्रतिभाशाली जनरल, आकर्षक, करिश्माई
और जनता में बेहद लोकप्रिय।
वो उपन्यास के दुखद नायक हैं।
उनकी यही लोकप्रियता और गणराज्य की तरफ उनका झुकाव
उन्हें लिविया और नए सम्राट टिबेरियस दोनों के लिए खतरा बना देता है।
उन्हें सीरिया भेज दिया जाता है एक अभियान पर, जहां रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती है। शक की सुई सीधे टिबेरियस और लिविया पर जाती है।
जर्मेनिकस की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी।
नहीं, वो एक बेहतर, ज्यादा नेक रोम की उम्मीद की मौत थी। क्लॉडियस का अपने भाई के लिए प्यार और उसका जाना कहानी को एक गहरा व्यक्तिगत दुख देता है।
और फिर हैं टिबेरियस, लिविया के बेटे, ऑगस्टस के अनिच्छुक उत्तराधिकारी।
टिबेरियस शुरू से ही एक उदास, निराशावादी, शक करने वाले इंसान के तौर पर दिखाए गए हैं।
ऐसा लगता है जैसे वो कभी सत्ता चाहते ही नहीं थे।
लेकिन सत्ता के बोझ और अपनी माँ की न रुकने वाली महत्वाकांक्षा ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया।
उनका शासनकाल ठीक ठाक शुरुआत के बाद धीरे धीरे आतंक के राज में बदल जाता है।
इसमें उनके प्रिटोरियन प्रीफेक्ट सेजेनस का भी बड़ा हाथ था, सम्राट के निजी अंगरक्षक दल का प्रमुख।
हाँ, उसने माहौल को और जहरीला बना दिया।
टिबेरियस बाद में रोम छोड़कर कैप्री द्वीप चले जाते हैं और वहीं से डर के जरिए हुकूमत करते हैं।
क्लॉडियस के लिए टिबेरियस एक नए ज्यादा खुले खतरे की तरह थे।
हाँ, एक शक्की सम्राट जो उन्हें किसी भी पल मरवा सकता था। लिविया का खतरा छिपा हुआ था, टिबेरियस का ज्यादा सामने। टिबेरियस के शासनकाल की शुरुआत में क्लॉडियस निराश होकर क्यूमे की ओरेकल के पास जाते हैं।
हाँ, वो प्राचीन इटली का प्रसिद्ध देवाणी स्थल।
वहाँ उन्हें सिबिल मतलब भविष्य बताने वाली पुजारिन से एक रहस्यमयी भविष्यवाणी मिलती है,
जिसमें इशारा होता है कि एक दिन वो क्लॉडियस द फूल यानी क्लॉडियस मूर्ख शासन करेगा।
ये भविष्यवाणी क्लॉडियस के लिए एक मार्गदर्शक धागे की तरह बन जाती है, उन्हें भाग्य का एहसास और ये सब झेलने की एक वजह देती है।
इसी बीच रोम पर असल में राज कर रहा था महत्वाकांक्षी और क्रूर प्रेटोरियन प्रीफेक्ट सिजेनस।
हाँ, क्योंकि टिबेरियस तो केप्री में खोए रहते थे।
सिजेनस अपने दुश्मनों को हटाने के लिए देशद्रोह के मुकदमों का एक सिलसिला शुरू कर देता है।
सिजेनस की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद टिबेरियस को हटाकर सम्राट बनने का सपना देखने लगता है।
लेकिन टिबेरियस चाहे कितने भी दूर हों, राजनीति के खेल में माहिर थे।
उन्हें साजिश का पता चल जाता है और वो बड़ी चालाकी से पासा पलट देते हैं।
एक बहुत नाटकीय सीन में टिबेरियस का एक पत्र रोम की सीनेट में पढ़ा जाता है।
पत्र शुरू में तो सिजेनस की तारीफों से भरा लगता है,
लेकिन आखिरी पंक्तियों में अचानक उसे देशद्रोही घोषित कर देता है।
सीनेट के सदस्य तुरंत पाला बदलते हैं, सिजेनस को पकड़कर मार दिया जाता है, उसके समर्थकों का भयानक कत्लेआम होता है।
और क्लॉडियस, वो एक बार फिर किस्मत और अपनी अमहत्वपूर्ण छवि के कारण
इस खून खराबे से बच निकलते हैं।
टिबेरियस का ये लंबा अंधेरा शासनकाल आखिरकार तब खत्म होता है जब बिस्तर पर पड़े बूढ़े सम्राट का गला
नए प्रिटोरियन प्रीफेक्ट माइक्रो घोंटकर मार देता है,
और इस तरह रास्ता साफ होता है कैलीगुला के लिए। अब आते हैं कैलीगुला पर, जर्मेनिकस का बेटा, क्लॉडियस का भतीजा।
कैलीगुला का अध्याय उपन्यास का सबसे भयानक हिस्सा है, सत्ता के पागलपन का चरम।
उसका सफर एक आकर्षक हालांकि थोड़े बिगड़े हुए नौजवान से
एक वहशी, क्रूर और पूरी तरह पागल तानाशाह बनने का है।
शुरू में जब वो गद्दी पर बैठता है तो रोम में जश्न मनाया जाता है, लोगों को लगता है टिबेरियस के बुरे दिन खत्म हुए।
लेकिन एक गंभीर बीमारी से उभरने के बाद कैलीगुला एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान बन जाता है, जैसे इंसानियत के हर बंधन से आजाद हो गया हो।
हाँ, वो पागलपन की हदों को पार कर जाता है, खुद को भगवान घोषित कर देता है,
बड़े बड़े सीनेटरों को अपनी पूजा करने पर मजबूर करता है, अपने प्यारे घोड़े इंसिटाटिस को कौंसल बना देता है,
अपनी बहनों के साथ अवैध संबंध बनाता है, सिर्फ मनोरंजन के लिए लोगों को भयानक मौतें मरवाता है।
इस दौरान क्लॉडियस की स्थिति बदल जाती है, पहले वो अनदेखे रहते थे, अब बहुत ज्यादा नजर में आ जाते हैं।
कैलीगुला एक क्रूर मजाक के तौर पर अपने अंकल क्लॉडियस को भी कौंसल बनाता है,
लेकिन असल में उसे अपना निजी मसखरा बना लेता है, अपने भयानक मजाकों का निशाना।
क्लॉडियस की जिंदगी हर पल सूली पर टंगी रहती है, उन्हें चापलूसी करनी पड़ती है, गिड़गड़ाना पड़ता है,
और एक पागल की सनक से बचने के लिए लगातार अपमान सहना पड़ता है।
कैलीगुला दिखाता है कि जब सत्ता पर कोई लगाम ना हो, कोई तर्क ना हो, कोई नैतिकता ना हो, तो वो क्या रूप ले सकती है। क्या आपको लगता है कि ग्रेव्स कैलीगुला के पागलपन में भी कोई तर्क दिखाते हैं, या वो सिर्फ अराजकता का प्रतीक है?
ग्रेव्स उसे ज्यादातर अराजकता के प्रतीक के तौर पर ही दिखाते हैं। शायद वो ये दर्शाना चाहते हैं कि जब सत्ता पूरी तरह निरंकुश हो जाती है तो वो तर्क की दुनिया से बाहर निकल जाती है।
कैलीगुला का पागलपन अब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी अपनी प्रिटोरियन गार्ड भी तंग आ जाती है।
ट्रिब्यून कैसियस चेरिया, जिसका कैलीगुला लगातार मजाक उड़ाता था, गार्ड्स के एक गुट का नेतृत्व करता है
और कैलीगुला की हत्या की साजिश रचता है। महल में एक अफरा तफरी और खूनी मंजर के बीच कैलीगुला मारा जाता है।
इसके बाद जो भगदड़ मचती है उसमें सैनिक महल को लूटने लगते हैं, तभी दो सैनिकों को क्लॉडियस,
हाँ, जो अब 50 साल के हो चुके हैं,
एक भारी पर्दे के पीछे छिपे हुए मिलते हैं। वो डर से कांप रहे हैं, उन्हें यकीन है कि अब उनकी बारी है।
लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा मजाक देखिए,
उसे मारने के बजाय सैनिक उसे पहचान लेते हैं, अरे ये तो महान जर्मेनिकस का भाई है,
और अचानक जैसे किसी सनक में वो उसे अपने कंधों पर उठाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, क्लॉडियस सम्राट, क्लॉडियस सम्राट।
हैरान परेशान क्लॉडियस को प्रिटोरियन शिविर में ले जाया जाता है।
गार्ड्स, जो शायद एक अनिश्चित गणराज्य की बहाली से ज्यादा ऐसे सम्राट को चाहते थे जिसे वो कंट्रोल कर सकें,
औपचारिक रूप से क्लॉडियस के प्रति वफादारी की शपथ ले लेते हैं
और उपन्यास ठीक इसी अविश्वसनीय क्षण पर समाप्त होता है।
क्लॉडियस जो जिंदगी भर सिर्फ बचने की कोशिश करते रहे, जो हमेशा दर्शक बने रहे,
अचानक खुद को रोमन साम्राज्य की पूर्ण सत्ता के केंद्र में पाते हैं।
एक ऐसी स्थिति जिससे वो हमेशा डरते थे और भागते थे।
ये उपन्यास कई जरूरी सवाल उठाता है, कई थीम पर बात करता है। सबसे पहले तो है पूर्ण सत्ता का भ्रष्टाचार।
हाँ, ग्रेव्स बहुत साफ दिखाते हैं कि बिना रोक टोक वाली ताकत हर किसी को कैसे बिगाड़ देती है।
सत्ता का जहर सिर्फ क्रूर लोगों को ही नहीं बिगाड़ता, ग्रेव्स दिखाते हैं ये अच्छे इरादों वालों को भी धीरे धीरे कैसे खोखला कर देता है।
ऑगस्टस अच्छे इरादों से शुरू करते हैं पर थककर तानाशाह बन जाते हैं। लिविया की सत्ता की भूख उसे राक्षस बना देती है।
केबेरियस एक सक्षम जनरल से शक्की तानाशाह बन जाते हैं
और कैलिगुला की ताकत उसके छिपे पागलपन को बाहर ले आती है।
दूसरी बड़ी थीम है दिखावा बनाम वास्तविकता।
लिविया नेक रोमन महिला का दिखावा करती है पर अंदर से बेरहम कातिल है
और पूरा रोमन राज्य गणराज्य होने का ढोंग करता है, जबकि असल में वो एक परिवार की फौजी तानाशाही बन चुका है।
हाँ, और इसके साथ ही नियति बनाम स्वतंत्र इच्छा का सवाल भी उठता है।
वो सिबिल की भविष्यवाणी क्लॉडियस की जिंदगी पर एक साये की तरह रहती है। लगता है शायद उसका यह अविश्वसनीय भाग्य पहले से तय था।
पर क्या क्लॉडियस सिर्फ किस्मत का मुहरा था या उसके अपने चुनाव, खासकर मूर्ख बनने का नाटक करने का उसका फैसला ने सक्रिय रूप से उसके रास्ते को बनाया?
उपन्यास शायद दोनों के बीच एक जटिल रिश्ते की तरफ इशारा करता है।
फिर इतिहास और सत्य की प्रकृति का सवाल भी बहुत अहम है।
एक इतिहासकार होने के नाते क्लॉडियस सच के लिए जुनूनी है। वो अपनी कहानी इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आधिकारिक इतिहास सिर्फ सत्ता का प्रचार होता है।
इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन ग्रेव्स हमें दिखाते हैं कि असली कहानी अक्सर हाशिए पर बैठे लोगों की फुसफुसाहट में छिपी होती है।
पर आखिर में क्रूर दुनिया में जीवित रहना, ये उपन्यास की आत्मा है।
क्लॉडियस ताकत या पारंपरिक नेकी से नहीं बचते, बल्कि मानी गई कमजोरी और छुपी हुई बुद्धिमानी से बचते हैं।
ये एक डरावना सबक है कि एक बेहद भ्रष्ट व्यवस्था में बचने का सबसे कारगर तलीका शायद यही है कि आपको कम आंका जाए।
और ग्रेव्स की शैली वो कमाल की है।
हाँ, क्लॉडियस का वो प्रथम पुरुष कथावाचन हमें सीधे कहानी के अंदर खींच लेता है।
इतिहास एक सूखा विषय नहीं रहता, बल्कि एक रोमांचक निजी पारिवारिक कहानी बन जाता है।
क्लॉडियस की आवाज एक ही समय में विद्वान, मजाकिया, दुखी और डरी हुई लगती है और पूरी तरह विश्वसनीय।
ग्रेव्स नाटकीय विडंबना का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम पाठक या श्रोता वो बातें जानते हैं जो कहानी के पात्र नहीं जानते।
हाँ, चूंकि क्लॉडियस अपनी कहानी बुढ़ापे में लिख रहे हैं, वो जानते हैं कि किसका क्या हश्र होने वाला है।
वो अक्सर पात्रों के भयानक अंत का पूर्वाभास देते हैं, जिससे लगातार एक डर और तनाव बना रहता है।
प्रतीकवाद भी है, जैसे जहर सत्ता के भ्रष्टाचार का प्रतीक है, या क्लॉडियस की शारीरिक कमजोरियां शायद राज्य की अंदरूनी बीमारी का प्रतीक है।
और भाषा वो सीधी साफ है जो उस जमाने के हिसाब से प्रामाणिक लगती है।
आई क्लॉडियस का भावनात्मक असर बहुत गहरा होता है। एक तरफ तो ये एक तेज रफ्तार राजनीतिक थ्रिलर है, रहस्य, साजिश, धोखे,
लेकिन उससे भी गहरे स्तर पर ये नुकसान, दुख और किसी तरह बच निकलने की एक दिल को छू लेने वाली कहानी है।
हम क्लॉडियस के बचपन के डर को महसूस करते हैं, भाई जर्मेनिकस की मौत पर उसके गहरे सदमे को समझते हैं,
टिबेरियस की ज्यादतियों पर उसकी नफरत को महसूस करते हैं और कैलिगुला के राज में उसके भयानक डर को जीते हैं।
हम इस अंडरडॉग के साथ सहानुभूति महसूस करते हैं, उसका जिंदा रहना हमारी अपनी चिंता बन जाती है।
ये उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी सभ्यता कितनी नाजुक है और सत्ता का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। ये रोम के भव्य मिथकों की परतें उधेड़ता है, दिखाता है कि इतिहास अक्सर आधिकारिक कहानियों से कितना अलग होता है।
सच्ची कहानियां अक्सर उन लोगों के निजी अनुभवों में छुपी होती हैं जिन्होंने घटनाओं को अपनी आंखों से देखा।
यह हमें याद दिलाता है कि आधिकारिक रिकॉर्ड कितने भ्रामक हो सकते हैं और सच की अपनी आवाज होती है, चाहे उसे कितना भी दबाया जाए।
हाँ, ये हमें ताकत, भ्रष्टाचार और इंसान के लचीलेपन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है।
ये दिखाता है कि कैसे बेहद मुश्किल हालात में भी सच को बचाए रखने और अपनी इंसानियत को बनाए रखने की इच्छा जिंदा रह सकती है।
बिल्कुल, और ये भी कि इतिहास के पन्नों में दबे ये पात्र भी हमारी ही तरह जटिल इंसान थे,
अपनी उम्मीदों, अपने डरों और अपने नैतिक संघर्षों के साथ।
उनकी कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि सत्ता की फितरत और इंसान की हालत में सदियों बाद भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है।
इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है,
नहीं, बल्कि इंसानी अनुभवों का एक जीता जागता ताना बाना है।
शायद ये किताब हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे दौर में भी सच को दर्ज करने की इच्छा जिंदा रह सकती है।
और ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या सचमुच अंत में सत्य सत्ता से ज्यादा ताकतवर साबित होता है, भले ही उसे सदियों इंतजार करना पड़े।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।